Prabhupada Krishna Krishna Srimate Bhakti Vedanta Swami Nami Namaste Sarasvateva Gaurvani Chari Nirvishesha Sunnivadi Pashyakte Satami Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sarasvati Gaurva Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
भगवान कृष्ण ने प्रकट किया श्री
अंदर ये बहुत से अवतारों में प्रकट करते रहते हैं। वह शरीर शरीर धारियों के लिए शरीरी परमात्माओं के लिए जीवों के लिए शरीरी कार्य है शरीर वाला बहुवचन में बोल रहे हैं कि शरीर नाम समस्त जीवों के परम कल्याण से उपाय न रूप का अर्थ है अधिज्ञे न खूब अच्छे तरह से अहमद का अर्थ है प्राप्ति समस्त जीवों का परम हित हो परम कल्याण हो इसको इसको प्राप्त कराने के लिए भगवान अपने दिव्य चिन्मय रूप को प्रकट करते हैं इस जगत में। भगवान का वह रूप इतना आकर्षक है इतना मंगलमय होता है कि शरीरी प्राणी उससे प्रेम करते हैं और विभिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। जेना तब अरहना समीहते करोते जिससे आपकी पूजा करते हैं अरहना पूजा बिना आश्रय के बिना किसी विषय के कोई क्या पूजा करेगा। किसी को कह दिया जाए निराकार से बात करो निराकार की पूजा करो कहां करेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। पर आश्चर्य है कि उस कंफ्यूजन को ही आजकल बहुत बड़ी फिलॉसफी मानी जाती है। निराकार कह करके ईश्वर को हटा देते हैं लेकिन ब्रह्मा जी भगवान शिव श्री नारद जी ये सब कह रहे हैं कि बिना भगवान के श्री विग्रह कहाँ पूजा कर नहीं कर पाएंगे। भगवान इसीलिए इस प्राकृतिक जगत में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं जिससे शरीरधारी जीवात्माएं आश्रय पा जाए और उनकी पूजा कर सके। तवार हम जन जनक सुनिए चार आश्रम है और चार आश्रमों के चार धर्म है। चार आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास चारों के धर्म है वेद क्रिया योग तप स्नान वेद पढ़ना वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना पढ़ना और बीज रक्षा करना ये ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म है। वेद पढ़ना बारंबार बहुत 25 वर्ष तक वेदों का अध्ययन होना चाहिए और वेद के ही पूरक ग्रंथ हैं सुप्लीमेंट्री ग्रंथ हैं पुराण इतिहास रामायण इन सबको पढ़ना वेद को पढ़ना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है वेद पढ़ना गृहस्थ आश्रम का धर्म है क्रिया योग। केवल क्रिया नहीं, क्रिया योग, वे क्रियाएं जो हमको श्री कृष्ण से जोड़े, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किए उसको क्रिया योग कहते हैं। तो क्रिया योग एक गृहस्थ का कर्म है। गृहस्थ को सर्वदा कार्यरत रहना चाहिए और तप ये वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है। तप का अर्थ है इंद्रियों को भोगों के तरफ से निकालकर और भगवत विषय विषयों में लगाना, इसको तप। जैसे वाणी संसार का वर्णन न करके भगवान के नाम रूप गुण का उच्चारण करे, यह वाणी का तप है। झूठा वचन न बोले व्यक्ति, हमेशा सत्य वचन बोले, यह वाणी का तप है। इसी तरह मन का तप है, शरीर का, शरीर का तप है देवर दुजल गुरु का पूजना, भगवान की पूजा करना, देवता की पूजा करना और गुरु की पूजा करना और आचार्य की पूजा। जो भक्ति योग में अग्रसर है उन वैष्णवों की, आचार्यों की पूजा करना, शरीर से मेहनत करना, शरीर का तप है। संस्थान प्रणाम करना भी तप है। आनंद से इस तप को करना चाहिए। यहाँ तो वृंदावन में वानप्रस्थी ही ज्यादा है। वानप्रस्थ का अर्थ है वन में प्रकर्षित प्रकृष्ट रूप में से स्थित है। अब घर में नहीं स्थित है, गृहस्थित नहीं है, वनस्थित है। तो जो वन में स्थित रहे, घर का काम धंधा छोड़ करके, वो वानप्रस्थ है। और वास्तविक वानप्रस्थ है वृंदावनस्थ होना है। वृंदावन में या मायापुर नवद्वीप में रहना, भगवान का हमेशा भजन करना, तप करना, या वानप्रस्थ जीवन का ध्यान रखना। वानप्रस्थ लाइफ में मुख्य दो तपस्या है, कम खाना और कम सोना। वैसे तो जनरल नियम है सबके लिए। भगवान कपिल देव कहते हैं कि पेट जितना है उसका आधा हिस्सा अन्न से भरना चाहिए और आधा में आधा जल से, एक चौथाई, और चौथाई पेट को छोड़ देना चाहिए हवा का संचार के लिए, तो हवा घूमती रहेगी। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत चाण करके बोरा में ठूस करके कोई सामान रखा जाए ऐसे, और बच्चा रोटी और भात और खाते, तो वो भजन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। भजन तो दूर की बात है, ठीक से जी नहीं पाएंगे, शरीर रोटी हो जाएगा। इसीलिए पेट का आधा हिस्सा अन्न से भरना चाहिए। अन्न से तत्पर है फल दूध अनाज इत्यादि ठोस चीज, और यहाँ तक कि दूध पीना या जूस पीना वो भी अन्न का अंदर है। सौ मिला करके हाँ 50% पेट को भरना चाहिए, बस आधा पेट खाना, कहने का से आधा पेट खाना। अगर इसको करके कोई देखे इतना शरीर में स्फूर्ति रहती है, सतगुण बना लगता है। और ज्यादा खाने से, भर पेट खाने से तमोगुण बढ़ता है, जमाई आती है। व्यक्ति अपने ऑफिस में भी काम नहीं कर सकता है, भर पेट खाने के बाद तो सोने को चाहिए, आराम करना चाहिए। तो ये तपस्या है, आधा पेट खाना, चौथाई पेट पानी और चौथाई हवा। और उसको भरने की क्या जरूरत, तो हवा प्राणायाम करना, तो प्राणायाम से हम उसको प्रैक्टिकल भर सकते हैं। इस तरह से जीना चाहिए। वानप्रस्थी का धर्म है तो, और संन्यास आश्रम का धर्म है समाधि। समाधि का अर्थ है सौ वर्ष मन हटाकर केवल कृष्ण में रहना, और कोई प्रपंच की कभी चिंता नहीं, चिंतन नहीं और वार्ता नहीं। तो भगवान इस जगत में जब अवतार लेते हैं, अपना रूप प्रकट करते हैं, तो वह सबके हित के लिए होता है। सन्यासी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, समग्र मानव जाति के लिए, समस्त जीवों के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण के आने के 4500 वर्षों के बाद, बहुत जल्दी आए भगवान। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो भूल गए थे बात को, भगवत गीता का उपदेश किए थे। भगवत गीता में कृष्ण समझाए कि ऐसे करो, कीर्तन करो, ये करो करो, लेकिन करके नहीं बताए। उसी भूल को सुधारने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए आए, और भगवत गीता का प्रैक्टिकल जीवन जी करके उन्होंने दिखाया कृष्ण से ऐसे प्रेम करना चाहिए। तो अपने उपदेश के अनुसार कृष्ण स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में व्यवहार किए, अपनी आचरित धर्म जीने ने सीखा है, स्वयं आचरण करके और अन्य समस्त मानव जाति को शिक्षा दे। इस तरह से कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण शिक्षा दिए भगवत गीता ने, सर्वधर्मान्तरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन उपदेश करने वाला स्वयं आचरण करके नहीं सिखाया, भगवान स्वयं सब धर्म छोड़ करके नहीं सिखाया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने सारा धर्म छोड़ा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने धर्म छोड़ा, वो बहुत हृदय स्पर्शी प्रसंग है। चैतन्य महाप्रभु दो भाई थे, एक विश्व बड़े भाई, सन्यासी हो गए, घर छोड़ गए, और इनको 8 बहने प्राप्त हुई थी, तो 8 मर गई, जन्म लेते हैं। तो सची माता असहाय थी और पिता की मृत्यु हो गई, तो इसलिए इनकी माता सची विधवा थी, विधवा थी। प्रभु स्वयं भी माता की सेवा छोड़ करके संन्यास कर दिए। कृष्ण के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया, पूरा नवद्वीप इनके चरणों की पूजा करता था। अद्वैताचार्य जैसे महान विद्वान ब्राह्मण अपने को चैतन्य महाप्रभु का दास करते थे, श्रीवास पंडित सेवक की तरह थे, पर सारा मान सम्मान नवदीप का ठुकरा करके और निमाई ने संन्यास ले लिया। मां होती रह गई लेकिन छोड़कर चल गई, और नव विवाहिता युवती पत्नी विष्णु प्रिया जीवन भर प्रवृत्ती रह गई, होती रह गई, लेकिन कृष्ण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सब छोड़ा। परम सुंदरी पत्नी का त्याग, परम पूज्या माता का त्याग, यही धर्म का त्याग है। तो भगवान ने धर्म का त्याग करके सिखाया। सर्व धर्मान परित्यज मां में कम शरण और वे कृष्ण के लिए रोते रहते थे, सदा विलाप करते रहते, अपना घर छोड़ा, अपना नाम छोड़ा, वे वृंदावन के लिए भाग रहे थे। दक्षिण भारत के समस्त तीर्थों में भ्रमण किए, जो कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने नहीं किया वही कार्य वे चैतन्य महाप्रभु ने किए। कृष्ण भक्ति करने की शिक्षा दी, तो भगवान का रूप है, भगवान का श्री विग्रह जब इस जगत में प्रकट होता है तो उसे सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है। कल्याण करने के लिए ही वे अपने विग्रह को प्रकट करते हैं। चारों आश्रम के लोग अपने अपने कर्म द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, वेद द्वारा, क्रिया योग द्वारा, तपस्या द्वारा और समाधि सभी भगवान की पूजा करते हैं। अनेक आश्रय, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम, चाहे गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, कोई भी आश्रम हो, सबके लिए भगवान पूज्य है और सबके लिए भगवान का रूप बहुत उपाध्याय है। अगर भगवान इस जगत में न प्रकट हो कि साक्षात ज्ञान नहीं हो पाए, आगे प्रस्तुत होता है। सप्तम नचे था परिजम दीर्घितम निजम भवे विज्ञान अज्ञान विदारणा जनम। रूप को इस जगत में प्रकट न करें तो अज्ञता को मार्जनन अज्ञान और अज्ञान के कारण होने वाले भेद का नाश करने वाला विज्ञान नहीं हो पाएगा। भगवान का रूप इस जगत में अगर प्रकट न हो किसी को विज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। जो विज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान अज्ञान और अज्ञान का मूल भेद को नष्ट कर देता है। अज्ञान जीव को अपने स्वरूप का और अपना संबंध भगवान के साथ के सब कुछ याद नहीं है, इसको अज्ञान कहते हैं। भगवान के रूप का ज्ञान, भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान, सब कुछ खत्म है, यह है अज्ञान। और विद्या मतलब भेद, और भेद क्या हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं आ भेद हो गया कि अब देह को मैं मान लिया और देह के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया, देह के संबंधियों को अपना संबंध माना, ये भेद है। तो अज्ञान और भेद इनको, इनका मार्जन नाश करने वाला विज्ञान कैसे होता है? जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तब जीव को ये अवसर मिलता है, तब वो समझ पाता है कि ये मैं इन्हीं जैसा इनका अंश हूँ, चेतन जीव हूँ और ये देह वस्तु है। भगवान को अपना मानने लगता है, अपना सब कुछ, अपना पुत्र, अपना पिता, माता, भाई, बंधु सब कुछ मानता है। भगवान इतने सुंदर है और इतने तेजस्वी कि उनको अपना सब कुछ मानने लगता है, इसका भेद नष्ट हो जाता है, ग्राहक बुद्धि आदि नष्ट हो जाता है। ऐसा ज्ञान विज्ञान होता है, संस्कार होता है। अब यदि भगवान इस जगत में आना छोड़ दे, न आना, तब किसी को कोई विशेष ज्ञान नहीं हो पाएगा। जीव को अपना ही ज्ञान नहीं हो पाएगा कि मैं कौन हूं, भूला हूं। किसी जीव का कोई कल्याण नहीं होगा, वो कहता रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सो हूं, क्या क्या हूं, कहने से क्या होगा। वास्तव में वह भगवान का अंश है, भगवान का दास है। भगवान कैसे हैं अगर वे अपने पर जगत में प्रकट न करें तो इसका ज्ञान नहीं होता है। गुण प्रकाश है भगवान, वैसे गुण का अर्थ है प्रकृति के पदार्थ, बुद्धि गुण है, इंद्रिया गुण है। तो इंद्रियों का प्रकाशन भगवान द्वारा होता है, बुद्धि के भीतर है, इसलिए बुद्धि में चेतना आती है, इंद्रियों में चेतना आती है, आंख देखती है, कान सुनता है। तो गुणों का प्रकाशन भगवान करते हैं तो इससे केवल भगवान का अनुमान मात्र होता है,
ही नहीं मिल रहा है। अध्यात्म के विषय में तो जीवक हो गया, भौतिक सुख नहीं मिल रहा है। तो भगवान इस जगत में आते हैं, अपने दिव्य स्थिति का प्रकट करते हैं, परम सुंदर, परम ज्ञानी, परम अर्शवान, तो सबके लिए परम कल्याणकारी होता है। नाना मनुपे उन जन्म कर्म भी निरूपित तपस्य साक्षिण मनो वचोभ्यामो देव क्रियायां तथा हे देव, हे परम पूज्य भगवान, आपके नाम और रूप निरूपित नहीं किए जा सकते। नाना रूप निरूपित आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। कितना नाम है और कितना रूप है, और रूप कितना सुंदर है और कितना संख्या में है, इसको नहीं कहा जा सकता। भगवान के नाम है, अनंत नाम है और नाम में अनंत शक्ति है। संसार में कोई भी नहीं कह पाएगा कोई से नाम की महिमा है। नाना रूप गुण जन्म कर्म है, गुण जन्म और कर्म, आपके गुण, आपके जन्म, आपके कर्म सब अनंत है। भगवान कितना जन्म लिए हैं, लेने देते रहते हैं, इसको कोई गिन नहीं पाएगा। जितने जीव हैं उतने भगवान के अवतार हैं, परमात्मा के अपने हृदय में बसे हैं, चीटी के भी हृदय में है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के हृदय में। अगर देखते हैं जितने सरसों के दाने हैं सब में श्री कृष्ण है, सब में परमात्मा है। गेहूं में, सरसों में, सामा में, सब में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो अवतार लेकर के ही बसे हुए हैं ना, अप्राकृतान से इस प्राकृत जगत में सब जगह अपने को विस्तार है, सब जगह है। क्या कोई जीत पाएगा और कितना उनका नाम है, नाम की कितनी महिमा है उच्चारण की, श्रवण की, उसको कोई नहीं कर पाएगा। स्वयं भगवान भी नहीं। एक बार भगवान कृष्ण से पूछा एक राजा ने, तो कथा सुनते होंगे कि मुचकुंद महाराज सूर्यवंश में राजा हुए और यहाँ मुंसर के पास आगरा के निकट भवनपुर के पास एक गुफा में सो रहे। मुचकुंद महाराज बहुत वर्षों तक देवताओं की रक्षा के स्वर्ग में जाकर के अश्वों का वध किए, लड़ाई करते करते उनको कभी सोने का अवसर नहीं मिला। तो देवताओं ने उनसे ये कहा कि अब विश्राम दीजिए। जब उनको सेनापति मिल गए, भगवान स्कंद मिल गए, सेठ के पुत्र, तब उन्होंने देवताओं ने कहा कि अब विश्राम दीजिए, आराम के लिए अब लड़ाई छोड़ दीजिए, हमसे वर मांगिए, आप क्या चाहते हैं, कोई यहाँ भवन, बगीचा, अप्सराएं आपको क्या चाहिए दे सकते। तो उन्होंने कहा कि ये सब बकवास स्वर्ग स्वर्ग बर्फ सब नहीं चाहिए, हमको आराम चाहिए, मैं नींद चाहता हूँ, बहुत दिन से जगा, बहुत वर्षों से अब मुझे सोने की व्यवस्था कीजिए, मैं सोना चाहता हूँ। और भगवान का कब दर्शन होगा, कब होता है मेरे, जब मेरी नींद टूटे मैं भगवान का दर्शन करूंगा, उसके पहले मैं जगूंगा, जगूं तो सीधे मंगलारती करूंगा, पहले नहीं जाऊंगा। तब देवता ने कहा ठीक है, आपको नींद देते हैं, आपको बीच में अगर कोई जगा रहा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही जाओ प्रभाव हो जाएगा। तो आकर के यहाँ धौल के पास चंबल नदी के किनारे और सो रहे गुफा में, तो श्री भगवान यहाँ मथुरा में थे, काल जमन के भाई का नाटक करते हुए श्री कृष्ण भाग चले, काल जमन को खदेगा, तो श्री कृष्ण भागते भागते चंबल नदी के किनारे पहुंच गए, जहां भक्त मुचकुंद सो रहे थे, मान चले गए और ये पीछे से गाली देता हुआ चला काल जमन। अरे नालायक, जब वंश का नाम डुबा दिया, इतने अच्छे वंश में जन्म करके इतना डरपोक इतना कायर, अगर तुम रुक जाओ मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। भगवान तो हाथ रहे थे भागते भागते, अरे सर तक अब पकड़ा अब पकड़ा, और इतनी ही दूरी भगवान मनाए थे, अगर ज्यादा दूर हो जाता तो लौट जाता, लेकिन अब पकड़ेंगे आप पकड़ेंगे तो पकड़ते पकड़ते खींचते दे गए मुश्किल से ही गुफा। उस गुफा में जा करके भगवान थोड़ा तेजी से भाग करके छिप गए, तो काल जमन गया कहाँ गया, इतना दूर हमको हैरान किया, दौड़ दौड़ा कर लाया, कहाँ गया, तो देखा कि पुरुष सो रहा है, भगवान मन की तांबर को हार दिए, तो वो समझा कि यहाँ आकर के ये सो रहा है, तो कहता अरे दुष्ट इतना दौड़ा करके ला करके सो रहा है, सोने से तुमको छोड़ देना, चलो इतना कर करके अपने पैर से भगवान को मारा, मुझकुंद महाराज को मारा, मुझकुंद महाराज को वो दुष्ट हुए, जगे जगे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जगने पर यह काला जोन देखते ही उनका मन रंज हो गया, बस उनके आंख में क्रोध की चिंगारी थे, वो वही देवताओं का वरदान था, आंख से ज्वाला निकल गई, उसी ज्वाला से जल करके भस्म हो गया। जब काल जमन मर गया जल गया, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान को देखते ही मुझको महाराज आनंद में भर गए और आ गए। फिर पूछते हैं भगवान से कि आप कौन हैं, इतने सुंदर इतने सुकुमार इतने तेजस्वी, आप इतना तेजस्वी हैं कि गुफा का अंधकार खत्म हो रहा है, भगवान बहुत चमक रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए वो नाम पहले ये बताते हैं कि हमारा नाम हमारा जन्म कहाँ हुआ है और गुणकर नाम ना नामी संत में विश्वास कर सकते हमारे अनंत माया है माया है भगवान कहते हे प्रिय मेरे जन्म मेरे कर्म और अभिधान मेरे नाम अनंत है मैं भी उनको नहीं गिन पाता अनंत माया है अनंत है इसलिए माया के मेरे द्वारा भी संख्यातम असत्य असत्य गिन पाना नाम क्या कर गिना इतना रूप है इतना जन्म है इतना नाम एक गिना नहीं पाऊंगा मैं नहीं जानता पृथ्वी के धूलि कण को भले गिन सकता है पृथ्वी में जितना धूलि है परमाणु है उसको गिना जा सकता है लेकिन मेरे नाम को मेरे रूप को जन्म को कोई गिनना चाहे तो नहीं गिन क्वचित जन्म से जीवन में पार्थ मान पूर्ण जन्म भी बहुत बहुत जन्मों तक जीने तो ये संभव है इस पृथ्वी को अगर पूरा आटा बना दिया जाए किसी मशीन में पूरा पीस दिया जाए और सूक्ष्म कण में बदल जाए पृथ्वी और एक एक कण को गिनना चालू करे तो हो सकता है कि बहुत बहुत जन्म तक गिनते गिनते कई लोग गिन कर गिन सकते ब्रह्मा जी अपना कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं भगवान शिव जी देख के बैठे हैं सब बड़े बड़े वैज्ञानिक देवता सब गिन में गिन तो हो सकता है कि इसको गिन देंगे पृथ्वी के धूलि कणों को गिन सकते हैं लेकिन मेरे जन्म को मेरे कर्म को और मेरे नाम को गिनना चाहें तो गिनते गिनते मर जाएंगे शेष नहीं कर पाए काल द्रव पन्ना भी तीनों काल में मेरे जन्म होते रहते हुए हैं आगे होंगे और इस समय हो रहे हैं काल उसी बात को श्री ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं, नाना रूपे भोजन करूंगी, आपके नाम और रूप इतने अनंत हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता। इसको कुछ लोग दूसरे तरह समझ लेते हैं, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आपका नाम है न रूप है, तो अनंत है और उसको समझ लेते हैं कि बिल्कुल नहीं, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई नहीं। ये समझना कितनी जरूरी है, जिसके नाम अनंत है ये कहा जा रहा है, रूप अनंत है और उसको कहा जाए कि भगवान का नाम नहीं है, रूप नहीं है, ये पागल का प्रवचन है ना। भगवान वामन देव की लीला कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी, भगवान वामन देव की लीला को प्रत्यान कहते हैं पारम
सोहम पवार हाथों गुहा में काम पा
अपना बनाने के आप पर कृपा करने के लिए मैं इस संसार में आया। राम भगवत आपने पहले बहुत प्रार्थना किया है, मैं भक्ति किया है और मैं भक्तवत्सल भक्त के द्वारा की गई भक्ति को मैं भूल नहीं पाता। इस भले आप सो रहे थे लेकिन इससे पहले आपने बहुत भक्ति किया है, आप मेरी याद किया, मुझे चाहते थे, इसीलिए उसी बात को स्मरण करते मैं यहाँ आ रहा हूँ। उसको महाराज कहते हैं कि मैं तो तमोगुण में सो रहा था, भगवान कह रहे पूरा पहले आपने भक्ति बहुत की है, इसलिए मैं आप पर कृपा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ आने का यही कारण मुझको महाराज ने पूछा कि इस अकेले जंगल में गुफा में आप क्यों आए, इतना सुकुमल सुकुमल पड़ा दक्षिण कमल तक कुमार आपने बहुत प्रार्थना किया। भगवान ने तो भक्त के द्वारा की गई भक्ति को कभी नहीं भूलता, स्वयं में भक्त के पास दौड़ कर देता है। जो बहाना था काल भगवान का, भगवान वहां जाना चाहते थे, कैसे जाए काल भगवान के भय से दौड़ते देते हैं। भक्त सो रहा है तमोगुण में है, इससे क्या उसने पहले भक्ति किया है, पहले की भक्ति की याद करके कृष्ण दौड़ते हुए भक्त के पास गए। तो श्री कृष्ण भक्त के द्वारा की गई भक्ति से आकृष्ट होते हैं। उनके गुण नाम सब अनंत है, इस बात को देवता लोग पढ़ते हैं। नाम रूपे मन कर्म जन्म निरूपित निरूपित मनोवत वास्तव में वाणी से निरूपण नहीं किया जा सकता नाम का या रूप का। इतना कोई कहेगा इतना बोलेगा बोलते बोलते मर जाएगा लेकिन वो नाम शेष नहीं होगा। तो अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत जन्म भगवान के अवतार अनंत है। करना क्या चाहिए मनुष्य समाज में, मनुष्य को करना चाहिए श्रीमन सुभद्रा श्रीमन घृणन संस्मरण सुचिंतन नामान निरूपण सुमंगला। जो व्यक्ति श्रीमन सुनता रहता है रूपाणी नामान भगवान के नाम को और भगवान के लीलाओं को अवतार को सुमन जीवन सुनता रहता है और बोलता रहता है गाता रहता है जीवन संस्मरण और समय का स्मरण करता रहता है चिंतन करता रहता है स्मृति में लाता रहता है और चिंतन करता है। क्या चीज नामानी उपाय भगवान के नामों को भगवान के रूपों को गौरताई को जगन्नाथ भोजन सुभद्रा को जगन्नाथ श्याम सुंदर जी को ये सब भगवान के रूप है। और इस वृंदावन धाम में तो हजारों मंदिर हैं और सब जगह भगवान के रूप में विराजित किया है आचार्यों ने। जिधर गए जिस रवि वंदन भगवान के रूप में, जो भगवान के रूपों को बार बार गाता रहता है और नमानी नमो भगवान के नामानी रूपाणी कैसे हैं मंगलानी। मंगल का अर्थ है सब दुख समाप्त करने वाला और सब सुख देने वाला। समस्त सुखों की हानि कर दे और परम सुख प्रदान करे उसको मंगल कर। भगवान के नाम और रूप में ही मंगल है, ये परम मंगल स्वरूप है। श्रीमान निरंसन स्मरण सुचिंतन नामा निरूपा मंगलानी दे। भगवान के नाम और रूप से मंगल है विश्व का, क्योंकि नाम और रूप ही मंगल है। इस मानव जाति का सबसे बड़ा कल्याण है इसमें कि भगवान के नाम को गाया जाए, भगवान के रूप को गाया जाए, भगवान के जन्म को गाया जाए। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से बताया। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेकर के इस बात को सिखाए, यह बहुत कलयुग है और इस युग में वैदिक कर्मों को नहीं किया जा पाएगा, करने की शक्ति नहीं रहेगी मनुष्य में। शुभ कर्म दान तपस्या सब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने वेदों के निष्कर्ष को बताया। वास्तविक मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति में विस्तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे।
भगवान का नाम मात्र व्यक्ति है, इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और चैतन्य महाप्रभु के परवर्ती जितने भक्त आचार्य हुए सबने इस बात को प्रभुपाद भी दसवा में स्वर्ग गए थे, भोजपुरी में भक्त जाते हैं जाकर जागर दिवसिया घोर भय गए। श्रील प्रभुपाद विदेशों में जाकर स्वर किया, अरे विषय भोगी अरे विलासी जगो जगो घोर हो गया। भोजपुरी में गीत है सत्य को श्री ने सारे विश्व में फैलाया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, भगवान का नाम भगवान का नाम। बस अर्जुन में और कोई उपाय काम नहीं करेगा, सबका डेट एक्सपायर हो गया। त्रेता में द्वापर में शत्रुघ्न में ही काम कुछ कुछ करते थे, क्योंकि उस समय भी भगवान नाम ही की प्रधानता है। सत्युग में देवता द्वापर में थी, लेकिन और साधन भी कुछ काम करते हैं, पर कलयुग आते ही दम तोड़ दिए, कोई शक्ति नहीं। भगवान का नाम बचा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, राम नाम नर केस कनक सिर कलिका। भगवान का नाम नरसिंह देव है, और कलयुग हिरण्यकश्यपु जैसे है। जैसे भगवान हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिए और प्रह्लाद की रक्षा की, वैसे ही नाम जपने वाला व्यक्ति जापक जन प्रह्लाद जी जप करेगा कीर्तन करेगा वो प्रह्लाद की तरह है। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ करके प्रह्लाद जी की रक्षा किया, इसी तरह भगवान नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति की भगवान रक्षा करेंगे, और कलयुग का पेट फाड़ देंगे। जापक जन प्रह्लाद जी दलिपा नहीं संसार, इस युग में जो उपाय है जो सबसे बड़ी चीज है हम लोगों को सब लेना चाहिए, भ्रम में नहीं होना चाहिए। और दूसरे पर हम तो आरोप कर रहे हैं कि हमको पकड़ाया नहीं गया है, हमको सिखाया नहीं गया है, ये बहाना नहीं करेगा। और कोई दूसरा चीज बताता है तो उसको आना चाहिए ना, ये तो कलयुग में लेट एक्सपायर हो गई क्या करते। कुछ है नहीं, योग के नाम पर आप जो कसरत मानते हैं योग है, योग जो योग का असली अर्थ है भगवान से संजोग, कृष्ण नाम जपना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण को प्रणाम करना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण के विषय में पढ़ना, कृष्ण के विषय में सुनना, यह असली योग है भक्ति योग। इसमें योग योग करते योग योग नहीं योगा योगा योग योग ज्ञान का ज्ञान जाने ज्ञान प्रेम करता है, वह योग 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 है, वह ज्ञान। भगवान के नाम हो अद्भुत है, नाम और रूप से ही भगवान कोई भूत नहीं है। बस निराकार कह दे और गलत ध्यान न करो, ध्यान क्या खाक करेगा, निराकार का ध्यान क्या हो सकता है। कोई यहाँ बैठा है और उसको पता लगे आपकी पत्नी निराकार में मिल रही तो व्यक्ति रोने लगे कि अब तो फोन भी नहीं हो पाए, फोन का जवाब कौन देगा, तो निराकार में मिल गए। कह सकता है कि अब क्या आप तो सब जगह अनुभव करो, तो निराकार में सब जगह भगवान के रूप से प्रेम होना चाहिए। भगवान के एक रूप नहीं अनंत रूप है। जन्माष्टमी पर भगवान अपना दिव्य रूप प्रकट किए, इससे जगत का परम मनोर हुआ और होता रहेगा। बहुत काल तक भक्त लोग गाएंगे सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतारों की बहुत चर्चा है। नृसिंह भगवान, वामन भगवान, रामचंद्र भगवान, श्री परशुराम जी इत्यादि बहुत से अवतार गणना नहीं की जा सकती, इतने अवतार हुए और होंगे। इसके लिए श्रीमद् भागवतम प्रभु का नाम है। भागवत में लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान प्रभास में अपनी लीला स्मरण कर लिए, उनको सूर्य की तरह कहा गया है, कृष्ण त्रिमणि निर्मलोचे, जब कृष्ण सूर्य प्रभास में अस्त हो गए तो बद्रिकाश्रम में ये भागवत सूर्य उदित हुआ। सुंदर जी का प्रश्न है कि कृष्ण अपने धाम में चले गए तो अब भक्तों का पोषण कौन करेगा, धर्म किसके शरण में गया, कर क्या होगा। सूक्ति बताते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, भगवान कृष्ण चले गए नदी के धाम तो उनके प्रतिनिधि के रूप में यह भागवत सूत्र उदित हुआ है। तो जो लाभ कृष्ण के साथ में मिलता था, जो सुख प्राप्त होता था, वह भागवत के सानिध्य में मिल सकता है। प्रत्यक्षा यह भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वाणमय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति, प्रत्यक्ष है। तो ये नहीं सोचना चाहिए भगवान कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण ही है ग्रंथ के रूप में। इससे आलोक मिलता रहेगा, प्रकाश मिलता रहेगा और सब भक्त इसकी शरण में है। तो पढ़ने से सुनने से परम फल रहेगा। भगवान कृष्ण के पास वैसे भी सब लोग नहीं थे, वे प्रकट थे पर उस पर भी तो कुछ लोग दूर थे और कुछ लोग तो उनसे लड़ाई कर रहे। श्रीमद् भागवत के संपर्क में आने पर कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। तो कृष्ण का यह प्रतिनिधि है ग्रंथ, इसमें भगवान के बहुत जन्मों की कथाएं हैं, भगवान के नाम हैं, गुण हैं। तो यह श्री कृष्ण के समान सुख देता है। इसके इसका आश्रय लेने से ज्ञान भक्ति वैराग्य सत्य सबका विकास होता है। इसे पढ़ना चाहिए। देवता लोग जिनमें ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर हैं, सब पर श्रीमन विरम संस्मरण सुचिंत नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रिया सत्यप्रत्यलोकमिन्द्रयो आविश्चेता नमाय मनोते। जो भगवान जो व्यक्ति भगवान के नाम और श्री विग्रह से प्रेम करता है और अपने क्रिया में भी रहता है, अपने घर के काम धंधा नहीं है, देह से व्यापार है, दैनिक क्रिया कलाप में रहता है, तो शरीर के लिए कर्म करता है, परिवार के लिए कर्म करता है, उपाध है कर्म करने का, कोई बात नहीं। प्रयासु अपने घर के काम धंधों में भी अगर है परंतु भगवान के नाम को जप रहा है, भगवान के रूप का स्मरण कर रहा है या वर्णन कर रहा है, तो अविष्ट चेता और चरणारविंद भगवान के चरणारविंद में भगवान के रूप में उसका चित्त आविष्ट हो जाता है।
चरण है, इस पर बहुत बोझ बढ़ गया है पृथ्वी पर,
संसार बढ़ जाए। तो सौभाग्य बात है कि हम जन्म ले रहे हैं, आप माँ पार्वती के गर्भ जा चुके हैं, तो केवल गर्भ में आने मात्र से, केवल आपका जन्म होने मात्र से इस पृथ्वी का भार दूर हो जाए। भारत अपने तरफ सौभाग्य की बात है, भारत और अपने तरफ आपके चरण स्वरूप इस पृथ्वी का भार दूर हो गया। कैसे? तब जन्मना, आपके जन्म लेने मात्र से। मैंने कहा है कि आप जन्म ले रहे हैं, बस इसी से सब असुर हताश हो गए हैं, सब राक्षस जनता हताश हो गए। अब तो दुख मारने वाला है, तो आपका जन्म आपकी जन्म मात्र से पृथ्वी का बहुत बोझ हल्का हो गया, भार नष्ट हो गया। और दृष्टान के पद का इस श्लोक में द्रक्ष्याम नाम ध्यान चतवार मुखम पिता, और हमारा और अक्षय भाग्य होगा कि हम लोग इस पृथ्वी को आपके चरणों से अलंकृत देखेंगे और इसके साथ स्वर्ग को भी अलंकृत देखेंगे। आप जन्म तो लेंगे, जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे, ध्यान वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, सब जगह वितरण करेंगे। आपके पद के, आपके चरण चिन्हों से जो सुशोभन है, जो सुशोभन है, जो बहुत सुंदर है, आपके चरण अच्छे सुंदर है, आप चरण चिन्ह बहुत सुंदर है, आपके चरण चिन्ह से अलंकृत पृथ्वी को हम लोग देखेंगे। आपका जो मुद्दा रचेंगे जन्म के बाद, आप भ्रमण करेंगे पृथ्वी पर, तो आपके सुंदर चरणों से अलंकृत पृथ्वी को देखेंगे। और इसके साथ स्वर्ग को भी देखेंगे। अभी निमंत्रण दे रहे हैं, हे प्रभु, जैसे आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे वैसे आप हमारे घर भी आइए, स्वर्ग में, सप्त लोक में, तीन लोक में, अमरावती में, या अलकापुरी में, सब तरफ भ्रमण कीजिए। भगवान सब तरफ रहे हैं, ऐसा वर्णन नरकासुर का वध करके भगवान सबसे पहले स्वर्ग गए और माता अदिति को कुंडल दिए, जो भौमासुर छीन लिया था कुंडल, और इंद्र का छत छीन लिया था, वो सिंहासन ले लिया था, वो छत छीन लिया था, बहुत सुंदर छत था, बहुत कीमती। तो भगवान भौमासुर का पद किए वो छत लेकर के इंद्र को पहुंचा है, माता अदिति को कानों का कुंडल दे। तो इस तरह भगवान स्वर्ग गए। जब तक वो करेंगे, जब आप पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे, तो उस समय कभी अवसर पा करके आप हमारे घर भी आइएगा, स्वर्ग भी अलंकृत देखेंगे, आपके चरण चिन्ह सलाम। कोई भी लोग पृथ्वी या स्वर्ग उसकी शोभा किसमें है, तो भगवान से संयुक्त होने में। देश वही धन है जहां जहां भगवान गए, जहां जन्म लिए, जहां रहे, जहां घूमे, तो केवल चरण विन्यास मात्र से, चरण रखने मात्र से वो स्थान धन हो गया। तो आपके चरणों से अलंकृत ईश्वर को देखें, ध्यान ध्यान ईश्वर और ध्यान पृथ्वी पृथ्वी को देखें। चरण चिन्हों से अलंकृत स्वर्ग, चरण चिन्हों से अलंकृत पृथ्वी, इसके साथ ही अर्थ मानना चाहिए। जब आप दृष्टिपात करेंगे तो आपके आगे नेत्रों के देखने से, आपकी दृष्टि पड़ने से स्वर्ग के सभी वृक्ष और तरु बहुत हर्षित होंगे, जीव सुखी हो जाएंगे। चरण विन्यास से पृथ्वी और दृष्टिपात से और उड़ने वाले पक्षी आदि वृक्ष आदि दूर के जीव सुखी हो जाए। सौभाग्य की बात है कि आप जन्म लेंगे मथुरा में और इसके साथ स्वर्ग में भी आएंगे। अवश्य आइएगा, ये हमारी विनती है। अभी पकड़ाने के लिए वो भगवान से विनय कर रहे हैं और जब भगवान लीला समाप्त किए पृथ्वी पर, जब वैकुंठ जाना हुआ तब तो सभी देवताओं के यहां से होते हुए गए हैं। इंद्र के घर, वरुण देव के घर, सभी सभी देवताओं के यहां गए। इसको अभी से ले लो निमंत्रण दे रहे हैं और भगवान अभी गर्भ में है, बच्चा है, फिर भी देवता सभी विनय कर रहे हैं कि आप हमारे घर जरूर रहिएगा, आप हमारे घर जरूर रहिएगा। ये कह रहे हैं हम देखेंगे स्वर्ग अलंकृत, इसी में निमंत्रण है। यह कहने की जरूरत नहीं कि आप आइएगा, जब आप आए हैं तो आएंगे ही। जब प्राकृत जगत में आएंगे तो हमारे घर भी आएंगे, जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो फिर स्वर्ग भी आएंगे। देवता ने कहा कि आपके जन्म में लेने मात्र से पृथ्वी का भार दूर हो गया, तो भगवान मानो कहेंगे अरे मैं भी जीवों के समान जन्म लेता हूं क्या? तो देवता लोग नहीं 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 सॉरी नते भवस्येष भवस्य कारणम बिना विनोदम तर्कया महे भवो निरोधा स्थिर विद्या कितना जटस्थ अभ्यास है अपने। हे अभव, अभव मतलब हे असंसारी, जिसका भाव नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, वो है अभव संबोधन कर रहे। हे अजन्मा प्रभु, आपका जन्म नहीं है। हे परम ईश्वर, भगवान का नहीं, मैं तो जन्म ले रहा हूं, मेरा भाव तो है। वास्तव में आप अभाव हैं, लेकिन आप भाव, आप जन्म ले रहे हैं, जन्म लेते रहते हैं। सत्यता का पलगन जो कि तीनों काल में आपका जन्म होता है, इस समय जब जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने से पृथ्वी का भार दूर हो गया, तो आपका भाव है, जन्म है, लेकिन आपके जन्म का कारण आपकी क्रीड़ा है, लीला है, आपका विनोद, आपकी मौज है। नंदे भवस्य भवस्य कारण, हे प्रभु आपके जन्म का कारण विनोदम बिना मात्र ज्ञान है। विनोद के अलावा और कोई कारण हम नहीं मानने हैं, हम नहीं मानते हैं। हम विचार करके देख रहे हैं कि भगवान का जन्म लेने का कारण क्या है, केवल क्रीड़ा है, खेल है, अपने सुख के लिए भगवान जन्म लेते हैं, अपना आनंद। और इस जगत में भाव का भू माने होना, जीव जो जन्म लेता है तो प्रकृति द्वारा बाध्य है, माया द्वारा बाध्य है कि माँ के घर में प्रवेश करेगा, बहुत दुख सहेगा, शरीर ग्रहण करेगा, फिर शरीर छोड़ेगा, बूढ़ा होगा। तो आपके जन्म का कोई कारण नहीं है, कर्म कारण नहीं है, कोई ऐसा कर्म किया है इसलिए आपको जन्म लेना पड़ रहा है, नहीं। कोई प्रकृति का दबाव नहीं है, कर्म कारण नहीं है, आपकी स्वच्छंद इच्छा एकमात्र कारण है, आपकी मौज, आपका आनंद। अतः विनोद के बिना आपके जन्म का कारण हमें मानते हैं। लीला विनोद मात्र है जन्म लेना। जन्म लेना भी एक आनंद की लीला है। तो भगवान तो गर्भ में भी परम आनंदमय है। देवता लोग आकर के भगवान की जान को गिन रहे हैं। भगवान का जन्म लेना भी एक आनंद की लीला है। और आगे जब कर्म करेंगे तो कर्म करने का तो देखा जाता है कि वो रोते हैं, लेकिन रोना भी एक आनंद की लीला है। एक दिन भगवान इसी ब्रज में जब अभी लगभग साल भर के थे, कृष्ण साल भर, एक साल के माता दूध पिला रही थी माता सुधा, तो कृष्ण का पेट भरा में पी रहे थे। देर करते पीने में तो माँ ने छुरा कर उनको अपना आश्रम छुरा कर कृष्ण को रख दिया जमीन। बहुत जरूरी काम आ गया, को दूध अन्न धान था और जल जाता, इसलिए दूध को उतारने के लिए कृष्ण को जमीन पर रखा, चली गई। तो कृष्ण के लिए ही दूध उबाला जा रहा, लेकिन एक साल का बच्चा क्रोध हो रहा है बात, इतना अपमान हमारा, इतना अपमान, अभी हमारा पेट नहीं भरा दूध पीने से, फिर भी हमारी चिंता नहीं कर रही है और हमको जमीन पर फेंक करके चली गई। इस घर में दूध की इतनी इज्जत है और मैं पुत्र बन कर आया हूँ, हमारी इतनी उपेक्षा है। क्रोध हो गया, क्रोध हो गया तो माँ चली गई थी दूध उतारने घर, पत्थर खोजे मसाला पीसने वाली लोहा, किसी तरह से लोहा को उठा लिया, उठा कर मटका जिसमें दही मथा जा रहा था उसमें मार दिए, छेद कर दिए। और आंखों में आंसू भर लिए, ये दिखाया था कि बहुत भूख लगी है और दूध नहीं पिलाई, आधा पेट पिला करके और चली गई। तो रो रहे थे, रो रहे थे, अफसोस भी हुआ, मार दी मटका खोल दी। माता ने सोता दूध उतार करके आई, देखिए छोटा हुआ तो समझ गए कि इसका काम है। माँ को बड़ा सुख मिला कि मेरा बेटा इस तरह से भावों का आदान प्रदान कर रहा है। अगर छोटा बेटा छोटा बच्चा खुद निकले तो अच्छा लगता है, कम से कम किसी किसी को अपना समझता है, अपना पहचानने लगा। क्रोध करना भी अच्छा मान तो माँ जगत बड़े खुश हो गए और उसे ये चिंता थी कि इसको डांटना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह से आज मटका खोल रहा है और देगा उसका चिंता है, ठीक आदत नहीं है, अब इसको दंड देना चाहिए। जल्दी पकड़ने तो उस समय कृष्ण दही का मटका तो खोल माखन खा रहे थे, उखड़ पड़ रहे थे और माँ की तरफ देख भी रहे थे, आएगी जरूर। जब अपराध हो गया है तो संकट थी कि आएगी जरूर, और खाते थे बालों को जो भिगा रहे थे, बालों को माखन दे रहे थे और खा भी रहे थे, दिखा रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या करूँ, बासी माखन खाऊंगा, ये दिखा रहे थे। माँ ने देख लिया तो चुपके से गई, पैरों को दबा करके मुकुट को बांध करके धीरे से बस मार देख लिए तो फिर खन से कूद करके भाग गए बहुत जोर से। माता भी पीछा करने लगे कि अंत में माँ थक गई इसलिए पकड़ में आ गए, बहुत भगाए माता को, बहुत परेशान हुआ। वो पकड़ के उसके बाद उखाड़ में बांधना चाहे, कमर में रस्सी लगाई, कृष्ण बहुत रोने लगे, भक्त भक्त रोने लगे, आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। बीच बीच में कुछ बोल रहे थे और ऐसा नहीं कर रहे थे, गोली पर खा रहे थे, रो रहे थे। यह रोना कृष्ण के आनंद जुड़ा है, ऐसा नहीं सुनना चाहिए बहुत विपत्ति में वे रो रहे हैं, बहुत दुख में रो रहे हैं। यह रोना भी सुख की क्रिया है, इसी के लिए भगवान ने जन्म लिया है। प्रश्न भारत परीक्षण का था कि ब्रजे प्रश्न क्यों करो, ब्रज में रहते हुए क्या कर दिए, तो उसमें यह एक काम है, मटका फोड़ना और अपराधी बंद करके बांधा जाना या नहीं जाना, यह अपने प्रश्न किए थे, मटका में नहीं कर सकते। बिना विनोदन बदतर गया है, भगवान का जन्म होता है तो किसी माया बंधन के नहीं, कर्म बंधन में नहीं, वो भगवान का विनोद है, भगवान के का सुख है, वो जन्म लेते हैं। से भगवान ने कहा जन्म कर्म चने के लिए, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, हमारा कर्म हमारा धर्म क्या है, जन्म कर्म को जानना एवं वो योग है तत्व का, जन्म कर्म को समझना जानना हमारा धर्म है। हम उसको समझ कैसे जानेंगे, तब तो जब हम सुनेंगे हम पढ़ेंगे, तो श्रवण से और कीर्तन से हम उसको जाने सुना कुछ बात कराए था जीव का कोई जन्म नहीं है तो भगवान का जन्म कहां से होगा। भगवान का जन्म है जीव भी और है, लेकिन जीव का जन्म पालन और प्रलय होता है या अभी अविद्या होता है। भगवान को भूल गया है जीव, भगवान का उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको जन्म मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। जीव के लिए जीव का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, और निरोधास कष्ट एक अभय सब भय से रहित है, और जो आपकी शरण लेता है समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में जीव में भी भाव विरोध या स्थिति नहीं है, केवल आपको भूलने के कारण जन्म सुन पाया। आप जो अवतार ले रहे हैं इसके पहले भी आपने बहुत अवतार लिया है, मनसा राजन्य विप्रतिबुधे सुकृतावतारुतम हे जागरूक श्रेष्ठ। आपने बहुत अवतार दिया, जैसे मत से मछली का अवतार, आपने मत से अवतार लिया, हैग्रीव अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार और हंस अवतार। राजन ने विप्रबुद्धेश करता होता, क्षत्रिय में आपने अवतार दिया श्री रामचंद्र के रूप में, राजन विप्र और ब्राह्मण में आपने अवतार दिया भगवान परशुराम के रूप में, केशव भेदर रूपते ब्राह्मण भगवान का अवतार परशुराम जी के चैतन्य देवताओं ने अवतार लिया वामन देव के रूप में, कश्यप जी के घर माता आदिति से। इस तरह अपने मन से कच्छप बला नृसिंह भगवान रामचंद्र ने अवतार लेकर कितना होता अवतार लेने करते और त्रिभुवन का पालन किए, तीनों लोकों में जितने जीव हैं सबका पालन किए और हम लोगों का पालन किए। जब जब अवतार लिए तो सबका पालन किए, न और त्रिभुवन चल तीनों लोगों में जितने जीव हैं सबका पालन हुआ। एक श्री कृष्ण अनंत कोटि जीवों का पालन करने समान सबका पालन करें, जैसे सब समय त्रिभुवन का पालन किए हमारा पालन किए, इस बात के अवकाश न कर ईश्वर हुआ भारण भारत आप पृथ्वी का भार धारण कीजिए, पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ा है उसका धारण कीजिए, इसका दुष्कृतियों को पापियों को असुरों को मारिए का वध कीजिए। हे जगतश्रेष्ठ, हम आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, वंदनम थे हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कह करके सभी देवता सष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, सिर जमीन पर रख रहे हैं, देवी के गर्भस्थ बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं, जदुतम ते वंदनम तुम्हें नमः। हे जदुश्रेष्ठ, आपको प्रणाम है, भार हरने का इस विषय कह रहे हैं, सब समय सभी जीवों का हित किए तो पृथ्वी का भार धैर्य करिए, पृथ्वी का भार करने में बहुत लोगों को डालना पड़ेगा, उनका शरीर भार शरीर गौर है या शुद्ध है, जैसे कौन से इत्यादि भाग बढ़ान इनका बहुत हकीक है, और फिर ये पृथ्वी का बोझ न बढ़ पाए, आप हतारी हृदयदायक हैं, इनका बस करके इनको ध्यान में दीजिए, अपने वैकुंठ ध्यान में, और पहले कर्णनी सुख था भगवान विष्णु ने वध किया, फिर आ गया कंस बढ़कर, हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा तो फिर वो आ गया शिशुपाल बनकर, जैसे पृथ्वी का भार जम जम टिके हुए, तो किसी पर्वत को हटा कर फेंका जाए फिर यही गिर पड़े, नहीं है बहुत भार पड़ा, फिर यह कस्तु जैसा भयानक कालनेमी जैसा कालनेमी ही कंस के रूप में आ गया, तो इस तरह से बहुत भार है, इनको दूर कीजिए, पृथ्वी का भार दूर कीजिए, भगवान उसके लिए अवतार नहीं है, पता है नहीं कि करता हो पड़ा है, और अपने धाम मुक्ति बीच प्राकृत जगत में उपद्रव न पाए, मुक्त हो जाएंगे आपके धाम में रहेंगे, यहाँ नहीं रहना है, इसके सब प्रार्थना है इसलिए भगवान की वंदना करें, बधाई सरकार चरण को गिर करके आप सम्मान करें, आप हमारी वंदना को स्वीकार कीजिए, पृथ्वी का भार दूर कीजिए, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि अश्नों का वध कीजिए, ये कहना थोड़ा खराब है क्या मार काट कीजिए आइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बोझ को हटाइए, तो ये इसी में सब कुछ आया है, अश्नों का वध भगवान अगर आ जाए तो एक बात जरूर कहेंगे लोग कि प्रभु ये आतंकवादियों को मानिए जो मुंबई पर होटलों को उपयोग किए, अभी कर रहे हैं सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, इन टेररिस्ट को आतंकवादियों को कहते हैं, कम से कम इतना कर दो तो कहो शांति तो शांत कीजिए मानव समाज को, शांत कीजिए उसमें सब निश्चित हो गया कि बिना साथ जो दुष्कृता हो, जब दुष्कृति है उनका विनाश होगा है। तो उसी तरह से देवता को बड़े श्रेष्ठ भाषा में कह रहे हैं कि माता पृथ्वी का भार दूर कीजिए, हे जदु श्रेष्ठ हम आपकी वंदना करते हैं। जब सब देवता प्रणाम किए भगवान को तो माता देवकी विस्मित हुई, कह गए वो सब दिखाई दे रहे थे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। उसके कर लक्ष्य कर तब करते हैं निष्ठान मते को शीघ्रत पद अपमान हे माता हे मां जल्दी को कर रहे हैं सभी देवता मान कह रहे हैं ब्रह्मा के शिव और नारद ऋषि संक्रांति ऋषि सब माता देवी को मान कह रहे हैं। जब भगवान माता है भगवान की चंदी है वो किसकी चंदी नहीं है, भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से शिव के उत्पन्न वही भगवान जब उदर में है तब तो देवकी के ब्रह्मा जी कार्तिक बेटा पौत्र और शिव जी प्रपौत्र तो ये माता देवकी को मान कहे अम्मा कहे अम्मा कहे कौन आश्चर्य है अम्ब हे मां बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे गर्भ में परम कुमार परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान आए हैं। एक कुक्षी धाता तुम्हारे पेट में परम कुमार परम पुरुष श्री कृष्ण आए श्री भगवान आए हैं। अनुसेना अपने अंशों के साथ या अपने अंश श्री बलराम जी के साथ संकट करें कि इसके पार है श्री बलराम जी माता देवी की तरफ जाए तो अपने अंश श्री बलराम जी के साथ परम पुरुष भगवान तुम्हारे उदर में आए हैं। न भवाय हम लोगों के समृद्धि के लिए हम लोगों की सुरक्षा के लिए उद्भव के लिए भगवान तुम्हारे पेट में आए हैं। देवकी कहती है भगवान अगर आए हैं लेकिन हमें बड़ा भय हो रहा है कंस कंस पता नहीं क्या करेगा कंस से भय मत करो अब वो बनना चाहता है तो मरने वाला है मरना चाहता है उससे भय मत मरना चाहता है मतलब उसका काम ऐसा है अब उसे सिद्ध होता है वो मरना चाहता है मरने पर लान किया है। चाचा बच्चों की हत्या किया अब वह मरने की तैयारी में है मूर्ख है मनभूत है मन पत्र मनुष्य अब कंस मरेगा अब तुम भय मत जब मरेगा तब मरेगा कि जब ज्ञान पत्र करेगा नहीं भोक्ता जदुना भरता दवा तो आत्मजा तुम्हारा पुत्र तुम्हारे देह से उत्पन्न तुम्हारा बच्चा स समस्त जादों की रक्षा करेगा, गुप्ता भविता रक्षक होगा, भविता भविष्य रक्षक होगा, तुम चिंता मत करो। जब समस्त जादों की रक्षा करेगा तो फिर तुम्हारी और सुदेव जी की रक्षा करना कौन करता है, तो सबकी रक्षा करेगा। तो आत्मजन तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पुत्र सब जातों की रक्षा करेगा और कंस मरेगा, मरने वाला है। देवताओं की दृष्टि से कंस का मरना एक मिनट का अंदर होता है, तो टाइम बहुत बड़ा होता है, तो मनुष्य की गणना से वो टाइम छोटा है। 11 वर्ष के बाद मरेगा, 11 वर्ष तो देवताओं के लिए 11 मिनट भी नहीं होगा। उसके कहते हैं कि वो मरेगा, मरना क्या है, उसके पाप उसके दुष्कर्म जो सिद्ध कर रहे थे मार दिया जाता है। हे माँ तुम चिंता मत करो, शंकर के माता देवी को प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम किए तो व्यक्ति को प्रणाम कर ही रहे थे, क्योंकि भगवान एक करते इस तरह से प्रणाम करके धीरे धीरे निकलना। तो ब्रह्मा जी ने संकेत किया जब तक निकले और नहीं निकल रहे, देवता लोग सब रुक गए। श्री सुखदेव भगवान का रूप कैसा है, अनिदम अनिदम, भगवान का रूप सीधम इस जगत जैसा नहीं है, माइक नहीं है, अर्थात दिव्य है, अनिदम ऐसा नहीं अलग ही है। भगवान का रूप अचिंत है, अद्भुत है, अप्राकृत है, चिन्मय है। इसे भगवान की स्तुति करके देवता लोग ब्रह्मा जी और शिव जी को कहे कि नहीं आप लोग पूछे, तो देवता सब सोचे कि हम लोगों को बाहर करके स्पेशल मिला देते हैं। इसीलिए देवता लोग सब अड़ गए कहे कि नहीं आप लोग आप सब आगे आप दोनों आगे आगे आए रहता ब्रह्मे सानो ब्रह्मा ही सानो ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे आगे चलने देते ही आता तो पीछे पीछे चलने वाले रहता तो उनको आगे करके कंस की कारागिरी से निकलते। प्रति जगह भगवान स्वर्ग चलेगा, दूसरा अध्याय पूरा होगा। भगवान की गर्भ में स्तुति हो गई, अब भगवान का प्रकट होंगे। अजन्मा भगवान के दिव्य जन्म का सुहावना समय आ गया। कल से भगवान के जन्म के समय कैसी शोभा हुई प्रकृति की, इतना सुंदर वातावरण हुआ है, इसका वर्णन किया है। वैसे भगवान तो रोज जन्म ले रहे हैं, अभी यह नहीं कहा पुस्तक कल जन्म लेंगे, तो कल भी जन्म लेंगे, परसों भी लेंगे, चौथे भी सब कई जगह जन्म लेते हैं ना। मथुरा में जन्म ले रहे हैं, भागवत पढ़ करके जानते हैं कि कितना दिव्य जन्म और कर्म है, कर्मों का वर्णन करते रहते हैं इसलिए प्रभु का कृपा से मुझे अवसर मिला भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन करने का। मेरा भाग्य है यही पर इसी आसन पर प्रभु पर जो बैठे थे और यहाँ नीचे में बैठा था दीक्षा जाने पर किसी स्थान से दीक्षा कर अच्छा अवसर है कि श्रीमद प्रभुपाद जी के इस बनाए हुए मंदिर में भगवान कृष्ण की चर्चा होती है। ऐसे रोज चर्चा होती है लेकिन श्रीमद भागवतम से भगवान के जन्म की चर्चा गत वर्ष में हुई थी और इस वर्ष निरंतर श्रीमन प्रेम संस्थाने से चिंता है सुनना बोलना गाना यही कर्तव्य है। तो अपने कीर्तन श्री कृष्ण के जन्म लीला के गाने का अवसर मिला इसके लिए मैं मंदिर के समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके से पंच गौर प्रभु जी वैष्णव दास जी और राजू प्रभु राजू प्रभु यहाँ नहीं है पिछले बार ये बहुत प्रेरणा दिया है उनसे कहे कि आप जरूर कथा कहिए इन सब भक्तों के से भगवान मुझे सक्षम रखे मेरी वाणी को सुरक्षित रखे कुछ बोलने के लिए शरीर अस्वस्थ होते हुए मैं सेवा किया कृष्ण के बारे में बोलना भक्तों को सुनने का अवसर देना यही हमारी सेवा है। सेवा में कोई कमी रह गई हो गति ही है कमी प्राकृतिक शरीर है प्राकृतिक पानी है कभी न कहने वाले बात निकल गई हो उसको अगर लोग डाल दिया छोड़ दिया और जो लेने लायक श्रीमद भागवत के श्लोक हैं बातें हैं वो लीजिएगा ये बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रवचन में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको फिल्टर करना चाहिए छानना चाहिए और जो उचित बात हो देना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रीमन विरन संस्मरण जो चिंता नामा निरूपण मंगला भगवान के नाम और गुण इसको बोलना सुनना कर्तव्य है। श्री डॉक्टरों का कृपा से प्रयास किया गया श्री डॉक्टरों का चरणों में बोल करके प्रणाम आप सबके चरणों में